Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आपकी मंजिल के बीच जो पत्थर आ रहा है, अगर आप उसी पत्थर को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ें, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी मंजिल आपको बाहथा में इंतज़ार कर रही होगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से हार्ट डिजीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है और काफ़ी हद तक घातक भी है। ऐसे में हमने उसकी फंक्शनिंग को जाना कि किस तरह से हार्ट फंक्शन करता है और किस तरह से हमें हार्ट अटैक आता है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू हम या तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सके या फिर उससे आने के बाद में उससे किस तरह से कम्प्लीटली क्योर हो सके।
बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसा कि हमने पिछले सीरीज़ में जाना था कि हृदय रोग नंबर वन किलर है, आज साइलेंट किलर है, और अचानक से आपको हार्ट अटैक का पता लगता है। लगभग 30% डेथ्स मृत्यु हार्ट अटैक से ही होती हैं। 100 में से 30 जितनी टोटल में मृत्यु होती हैं। भारत में पिछले साल 2015 में लगभग 29 लाख लोगों की डेथ हुई हार्ट अटैक से, सिर्फ एक साल में एक बीमारी से, और उसमें 15 लाख लोग 50 साल की उम्र से पहले थे। तो यंग लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है और यंग लोगों में डेथ्स भी, 15 लाख डेथ्स हमारे 15 लाख यंग लोग 50 साल की उम्र से पहले वाले एक साल में मर गए हार्ट डिजीज से। तो आप समझ सकते कितनी बड़ी समस्या है।
करेक्ट।
अब ये हार्ट अटैक कहीं भी कभी भी किसी को कहीं भी आ सकता है।
जी,
जिसके पास भी दिल है उसको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है।
बिल्कुल। जी,
आजकल पहले तो कहते 60 साल की उम्र के बाद आएगा, 70 साल की उम्र के बाद आएगा। ये कहते हैं ओल्ड लोगों की बीमारी है, हाईली स्ट्रेस्ड लोगों की बीमारी है, जो लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होते हैं उनकी बीमारी। किंतु अभी आपने मैंने लास्ट टाइम भी ये बात शेयर की थी कि अब ये बीमारी ऐसी नहीं है। अब तो बस कंडक्टर्स को भी आते हैं, फार्मर्स को भी आते हैं, अनपढ़ लोगों को, बिल्कुल जो स्कूल कॉलेज में कभी गए उनको भी हार्ट अटैक आता है, गरीब से गरीब को आता है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को भी आ जाता है, और 60 साल के लोगों को भी आता है, तो 40 को भी आता है, 25 को भी आता है, 30 को भी आता है, 35 को भी आ जाता है। अच्छा, पहले समझते थे शायद मेल्स को ज़्यादा आता है, पुरुषों को ज़्यादा आता है, अभी महिलाओं को भी लगभग सेम, स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं जो ऑफिस में काम करती हैं, वो जितने मेल्स को हार्ट की बीमारी होती है उतना ही महिलाओं को भी हार्ट की बीमारी हो गई है। क्योंकि उनको भी वही स्ट्रेस फैक्टर्स और वही डाइटरी फैक्टर्स, उनका भोजन भी वैसा ही हो जाता है, फास्ट फूड खाने लगते हैं, घर में बनाते नहीं हैं, तो उनका जो फूड प्लस उनकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। घर में भी काम करते हैं तो एक्सरसाइज तो होती है ना।
बिल्कुल।
अभी वो सिर्फ ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, घर आके फिर वही स्ट्रेस में रहते हैं, तो दे हैव द सेम नाउ चांस ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज।
ओके।
अब दो बातें हैं, एक एंजाइना और एक हार्ट अटैक।
करेक्ट।
एंजाइना और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है? एंजाइना उसे कहते हैं जब हमारी हमें छाती के बीच में दर्द होता है, घबराहट भी होती है, और स्पेशली एक अमाउंट ऑफ एक्जर्शन के बाद। सपोज आप रोज चलते हैं, पैदल करते हैं, तो आपको 1 किलोमीटर जाने के बाद वो दर्द होता है, और आप वहाँ 1 मिनट रुक जाइए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल।
या आप वहाँ पर एक गोली, आधी गोली सॉर्बिटेट की जीप के नीचे रख लीजिए, या नाइट्रोलिंगुअल स्प्रे आता है वो स्प्रे कर दीजिए जीप पे, थोड़ी देर में दर्द खत्म हो जाएगा, और फिर देन यू कैन वॉक अगेन। राइट। किसको 2 किलोमीटर पे, किसको 1 किलोमीटर पे, किसको 500 मीटर पे, इस तरह से दर्द उसको मतलब उसी 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 टाइम पर होगा एग्जैक्ट। इसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल माना इट्स फिक्स्ड, मतलब कितने अमाउंट पर ब्लड सप्लाई हार्ट को कम पड़ेगी और वहाँ पर तकलीफ होगी। नॉर्मली जब हमारी हार्ट की आर्टरी 70% ब्लॉक हो जाती है, ये आर्टरीज हमारी बचपन से ब्लॉक होना शुरू होती है, 4-5 साल की उम्र से ब्लॉक होना शुरू होती है, और धीरे 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 ब्लॉकेज होते 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 जब 70% ब्लॉक हो जाता है, तो फिर छाती में ऐसा दर्द होता है, उसको एंजाइना कहते हैं।
ओके।
नॉर्मली ये दर्द 2-3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में ठीक हो जाता है, आप बैठ जाइए, सॉर्बिटेट ले लीजिए, ठीक हो जाए। किंतु अब हार्ट अटैक कब कहेंगे? हार्ट अटैक तब कहते हैं जब ये दर्द जोर से होता है और साथ में पसीना आता है, बहुत जोर से घबराहट होती है
जी,
कई बार साथ में उल्टी भी आती है, उल्टी आने का दिल करता है, और जिसको हार्ट अटैक होता है उसको ऐसा लगता है मैं अब मरने वाला।
अच्छा,
ये टिपिकल फीचर्स हैं, दर्द, साथ में पसीना, साथ में उल्टी की फीलिंग या नौजिया या उल्टी आ भी जाना, और फिर साथ में ऐसा ऐसा डर अंदर से, ऐसी घबराहट कि मैं मरने वाला।
ओके,
मतलब पेशेंट फील्स हेल्पलेस, ऐसा दर्द उसने कभी जीवन में महसूस नहीं किया होता है।
अच्छा,
ये फर्स्ट टाइम उसके लाइफ में आता है, राइट?
जी।
तो ऐसा ऑपरेसिव पेन अंदर से फील होना, ये जो है हार्ट अटैक की निशानी है।
ओके।
और ऐसा दर्द 20 मिनट से अधिक चलता रहता है।
ओ।
और सॉर्बिटेट लेने से या नाइट्रोलिंगुअल स्प्रे लेने से इसमें रिलीफ नहीं मिलता है। ओके?
जी।
अगर उसमें रिलीफ मिल रहा है तो एंजाइना है, ये रिवर्सिबल है, राइट? आप थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, वो लिया स्प्रे तो ठीक हो जाएगा, ये रिवर्सिबल है। बट हार्ट अटैक इरिवर्सिबल है।
ओके।
मैं समझता हूँ हमारी दर्शक इस बात को समझ पा रहे हैं कि एंजाइना और हार्ट अटैक में क्या फर्क है।
बिल्कुल,
ये पहचान करनी बहुत जरूरी है। एंजाइना में आगे इलाज की कोई आवश्यकता नहीं, इमिजिएटली आप उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, प्लान करके जाइए, डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट कराइए, ECG करिए, अपनी स्ट्रेस टेस्ट करिए, इको कराइए, बाद में एंजियोग्राफी करिए, बट यू हैव ए टाइम विद यू। एंजाइना में टाइम है आपके पास, क्योंकि हार्ट अटैक में टाइम नहीं है।
बिल्कुल।
अगर आपको लग रहा है कि आपका ऐसा दर्द है जिसमें बहुत घबराहट हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, वो लगता है मरने वाले हैं ना, तो तुरंत इन्फॉर्म करिए आसपास के अपने लोगों को और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाने की कोशिश करिए।
ओके।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, नॉर्मली क्या होता है हमारे भारत में, मॉब फिनोमेना है, किसी कोई थोड़ा सा तकलीफ हो सब लोग उसको घेर लेते हैं। जैसे किसी को ऐसी तकलीफ हो खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, उसको अकेले में मतलब थोड़ा सा एक व्यक्ति उसके आसपास रहे, बाकी लोग दूर हो जाएं ताकि हवा आ सके, है ना। उसको कभी भी उठा के कहें कि तुम यहाँ से चल के इधर जाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए, और ना उसको अधिकतर उठाना चाहिए वहाँ से, उसको वहीं लिटा देना चाहिए, ज़मीन पे है तो ज़मीन पे लिटा देना चाहिए, और उसको वहीं पर मेडिसिन मतलब जो है उसको हेल्प देनी चाहिए।
ओके।
राइट, ये कई बार हम करते हैं ना, उसको उठा के चलो हम बेड पे लिटा दें, ऐसा कर दें, कई बार हम उसको उठाते हैं, उठाने पे थोड़ा सा एक्सर्शन भी एक छोटे हार्ट अटैक को बड़ा कर सकता है।
ओके।
कई बार उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, कुछ और करने की कोशिश नहीं, उसको हमें खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, हवा आने देना चाहिए, आसपास कम लोग होने चाहिए, और उसकी हेल्प के लिए हमें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, है ना, और उसकी ECG हो सके तो ECG करानी चाहिए इमीडिएटली, सॉर्बिटेट पेशेंट के पास सॉर्बिटेट जिप नीचे रख देनी चाहिए, और अगर उससे दर्द ठीक नहीं होता तो 5 मिनट बाद एक और सॉर्बिटेट जिप नीचे रख सकते हैं, और फिर भी दर्द ठीक नहीं होता 5 मिनट बाद एक और सॉर्बिटेट जिप नीचे रख सकते हैं, ठीक है।
ओके।
अगर आपके पास डिस्प्रिन टैबलेट है, 325 मिलीग्राम की टैबलेट आती है जो पानी में डिजॉल्व हो सकती है, उसको हम, बड़ा सिंपल तरीका है, उसको आधा गिलास पानी में डाल दीजिए और वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी और पेशेंट को तुरंत पिला देनी चाहिए।
ओके।
तो डिस्प्रिन क्या करता है, हार्ट अटैक क्यों होता है, वो जो हमारा तो जो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लाक है, जो ब्लॉक है, जो आर्टरी के अंदर ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल जम गया है, वो क्रैक हो जाता है।
ओह, ओके।
वो क्रैक हो जाता है, क्रैक या अल्सरेशन हो जाती है उसकी, और उस पर खून जम जाता है। जो 50% हार्ट ब्लॉक था या 60% था या 70% कभी 30% भी ब्लॉक था, वो क्लॉट बनने से, खून का थक्का जम जाने से अचानक 100% हो जाता है।
Okay.
और ये कारण है हार्ट अटैक का, राइट?
जी।
मतलब अचानक जब हमारी आर्टरी खून जमने से, क्लॉट बनने से हार्ट 100% ब्लॉक हो गए, अचानक, रिमेंबर अचानक वर्ड है ना, अचानक वो 100% ब्लॉक हो गई, उससे हार्ट अटैक होता है।
ओके।
ब्लॉक होने से हार्ट अटैक नहीं होता है, ब्लॉक 70% हो जाए उससे एंजाइना होता है, 80% हो जाए उससे एंजाइना होगा, 90% हो जाए उससे एंजाइना होगा, 100% हो जाए उससे एंजाइना होगा, किंतु उससे हार्ट अटैक नहीं होगा। बिना क्रैक हुए, बिना क्लॉट हुए हार्ट अटैक नहीं होता।
ओके।
तो ब्लॉक डज नॉट लीड टू हार्ट अटैक, इट इज द क्लॉट, क्लॉट फॉर्मेशन विच लीड्स टू हार्ट अटैक।
ओके।
ओके, कई बार लोग डरते हैं, मेरे इतनी सारे ब्लॉक हैं, मेरे को 8 ब्लॉक है, मेरी 80% ब्लॉक है, मेरी 90% ब्लॉक है, मेरी 100% ब्लॉक है, वो खतरनाक बात नहीं है, आर्टरी का क्रैक होना खतरनाक बात है।
ओके।
राइट?
जी। तो कोई ऐसे होम वन ऑफ द मेडिसिन आपने बताया कि किस तरह से स्प्रे डालने से या फिर कोई मेडिसिन लेने से ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल में आ सकता है, और कोई ऐसी और कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आप बताना चाहेंगे इसमें?
सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ बेड रेस्ट।
बेड रेस्ट, ओके।
फर्स्ट थिंग इज नॉट डिस्प्रिन नॉट सबिटेड, फर्स्ट थिंग इज बेड रेस्ट ना, मतलब एकदम कंप्लीट रेस्ट। बॉडी को मूव नहीं करना चाहिए। जब हार्ट का ब्लड मैंने पता है हार्ट रेट 100% बंद हो गई, खून जाना बंद हो गया, तो एकदम बॉडी को रेस्ट चाहिए। थोड़ा सा एग्जर्शन उस एरिया में बड़ा अटैक पैदा कर देगा, छोटे अटैक या बड़ा अटैक। दूसरी बात ऑक्सीजन
जी,
आप जहाँ तक उस खुली जगह हो,
खुली जगह पे होने,
ऑक्सीजन आए, सब लोग आसपास से पीछे हट जाए, है ना, जहाँ तक हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज़्यादा पेशेंट को चाहिए
जी।
तीसरी बात डिस्प्रिन, डिस्प्रिन अगर आपके पास है हमेशा हर एक को रखनी चाहिए डिस्प्रिन। हमारे एक छोटे किट में सबके पास, ट्रेन में कहीं हम जाएँ हमारे एक डिस्प्रिन 10 पैसे की कितने 20 पैसे की गोली आती है, तो हमारे पास वो, तो हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो क्लॉट, वो जो बेसिकली क्लॉट बनने का जो प्रोसेस है, एक डिस्प्रिन करने से उसको हम रिवर्स करना शुरू कर सकते हैं, क्लॉट को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो एक डिस्प्रिन वो इमीडिएट एक्ट करती है, पानी में डिजॉल्व किया इमीडिएटली खून के द्वारा एकदम हमारी बॉडी हार्ट में पहुँच जाती है और वहाँ से इफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये जैसे एक बहुत सस्ती रेमेडी है। और तीसरी जो बात, चौथी बात है, वो है सॉबिटेट की टैबलेट। वो जीभ के नीचे, आप जीभ पेशेंट के ऊपर करके अंडर द टंग प्लेस कर दीजिए, वो डिजॉल्व हो जाएगी और उससे पेशेंट को बेटरमेंट होगी। अगर उसके बाद भी पेशेंट को अगर रिलीफ नहीं होता, 5 मिनट बाद रिपीट करिए, और फिर भी अगर ठीक नहीं होता फिर 5 मिनट अगेन एक गोली और रिपीट कर सकते हैं।
ओके।
अगर आपके पास स्प्रे है, नेजल्स वो है नाइट्रोजन एंटीजी का स्प्रे है, वो स्प्रे कर सकते हैं सेम वे 5-5 मिनट के इंटरवल पे। और इस बीच में आप कोई ना कोई मतलब डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए और इमीडिएटली पेशेंट को शिफ्ट कर देना चाहिए। हो सके तो ECG कर लेना चाहिए, और ECG कराने के बाद पेशेंट को डॉक्टर देखेगा, क्योंकि पेशेंट ले में तो देख नहीं सकता है, तो डॉक्टर ही देखेगा। तो इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें, और प्रेफरेबली ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहाँ पर एंजियोप्लास्टी की सुविधा हो। अगर आपके शहर में एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है, तो भी नियर बाई हॉस्पिटल, जैसा भी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल है, ICU है, CCU है, वहाँ पर इसको शिफ्ट कर देना चाहिए। राइट, वहाँ पर जाने के बाद वो उसकी फिर उसके ECG करेंगे, ECG करके उसको देखेंगे क्या कौन सा हार्ट अटैक है, कैसा हार्ट अटैक है, उसके हो सके तो पेशेंट के पुराने ECGs पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने एक्सरे, पुरानी जो कोई इन्वेस्टिगेशन कराई हो आपने कभी, वो साथ में लेके जानी चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम ECG करते हैं तो कई बार वो ऐसे होते हैं कि उसमें क्लियर इंडिकेशन नहीं आता है, या कई बार इंडिकेशन आता है और पुराने ECG से कंपेयर करने पे हम लोग एक्यूरेटली डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को अब क्या होगा। फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वहाँ ब्लड टेस्ट करते हैं
जी,
ब्लड टेस्ट करके देखते हैं इसको हार्ट अटैक के कुछ टेस्ट होते हैं, उसे TROP-I या TROP-T टेस्ट कहते हैं, वो हम टेस्ट करते हैं। कुछ कार्डिक एंजाइम्स होते हैं, CPK, CPKMB उनको कहते हैं, वो फिर उसके इमीडिएटली हमें पेशेंट को क्या कंडीशन हुई उसके बारे में बता देता है। और उसको फिर अकॉर्डिंगली हम उसके अनुसार और भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ भी साथ में देखिए, क्योंकि देखने में डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वालों को ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं उनको अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, जो स्मोकर्स हैं उनको अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, ऐसे ही जो मतलब जिनके कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होते हैं, HDL कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, LDL ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, उनको भी ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं
जी।
तो मतलब ऐसे कुछ ये कारण है जो कि साथ में ऐसा रिलेटिव जाना चाहिए जिसको पेशेंट के बारे पता हो, क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर पेशेंट से कम पूछता है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट खुद एंजाइटी में होता है। तो पेशेंट का रिलेटिव कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन हो, फाइल हो, तो साथ बड़ी मदद मिल जाती है।
बिल्कुल।
तो ये हमेशा कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं ले जाना
जी,
और डॉक्टर बेचारे वहाँ कन्फ्यूज जाते हैं कि क्या करें।
सही बात है।
तो इसलिए हमेशा आप अपने रिकॉर्ड्स को साथ में लेकर जाना चाहिए, और इमीडिएटली जैसे अगर वहाँ पर एंजियोप्लास्टी की सुविधा है तो within 3 hours, अगर हार्ट अटैक होने के within 3 hours 3 घंटे के अंदर अंदर अगर हम हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वहाँ एंजियोप्लास्टी की एंजियोग्राफी की सुविधा है, तो आजकल उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इमीडिएटली पेशेंट को व्हील इन करते हैं कैथ लैब में, और वहाँ उनकी एंजियोग्राफी करते हैं, और जो जहाँ पर ये ब्लॉक, जहाँ पर क्लॉट बना है, उसी आर्टरी में एक बैलून डाल के, और वो पहले उसको गाइड वायर डालते हैं, फिर बैलून डालते हैं उसके ऊपर से, और बैलून से उसको उस एरिया को डायलेट करते हैं जो ब्लॉक जहाँ क्लॉट बना है, और उसको फिर वहाँ एक्सटेंट लगा देते हैं। तो इससे ये बहुत अच्छा एक तरह का वरदान हो जाता है कि पेशेंट के जो हार्ट अटैक से जो कुछ सा हार्ट का मरने वाला था उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
ओके
राइट, तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी, बट सब जगह भारत में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पर ऐसी भारत में सुविधा उपलब्ध है
जी।
और कहीं कहीं लैब्स हैं, कहीं कहीं कैथ लैब्स हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते।
ओके,
वो 24 घंटा डॉक्टर्स, क्योंकि उस
कभी भी आ सकता है,
कभी भी हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। अगर डॉक्टर दिन में सारा दिन काम करके रात में सोया है तो वो भले कैथ लैब खुली हुई है, आईसीयू खुली हुई है, पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। तो वहाँ हमें पता करना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी ये लोग करते हैं नहीं करते रात में
जी,
रात में या इस टाइम जब हार्ट अटैक हुआ उसमें करते नहीं करते, तो ये हमें देख लेना चाहिए। नहीं तो फिर क्या आजकल थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, यूरोकाइनेज है, ये सस्ते हैं, और भी दूसरे रेटिप्लेज आते हैं, टेनेक्टिव्लेज आते हैं, वो महंगे हैं, 30,000 से 35,000 का एक इंजेक्शन आता है।
अच्छा,
वो फिर हम इमीजिएटली वहाँ से हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है, वहाँ फार्मेसी में मिल जाता है, और वो इमीजिएटली वो इंजेक्शन दे देते हैं। विद इन 3 आवर्स बेस्ट रिजल्ट होते हैं, 3 घंटे के अंदर अंदर दे दें तो, या 4 घंटे के अंदर, नहीं तो फिर 6 घंटे तक तो अच्छा असर करता है, उसके बाद असर कम हो जाता है। फिर भी डॉक्टर अपनी उसके हिसाब से उसकी अपनी पेशेंट कंडीशन देखते हुए, पेशेंट की स्थिति को देखते हुए, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको देखते हुए डॉक्टर 24 घंटे तक दे सकते हैं।
ठीक है,
और प्लस कुछ वो टेस्ट कुछ बातों के बारे पूछते हैं पेशेंट से, उसके अनुसार वो डिसीजन लेते हैं।
डॉक्टर साहब, क्या ये डिजीज इज इट हेरिडिटरी आल्सो?
यस, लगभग ये देखने में 30% केसेस में ये डिजीज हेरिडिटरी माना फैमिली हिस्ट्री होती है, पेरेंट्स को होती है तो बच्चों को बीमारी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कुछ जीन्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो मतलब विच मेक्स दिस डिजीज मोर मतलब उनके चांस बहुत ज़्यादा हैं।
अच्छा,
आजकल एक स्पेशल टेस्ट है जो कि जिसको हम सीरम लाइपोप्रोटीन लिटल ए, छोटा ए जो होता है ना वो विद इन ब्रैकेट, उसको हम वो टेस्ट एक होता है। अगर मान लीजिए मेरे को हार्ट की बीमारी है और मैं अपने बच्चे के बारे पता करना चाहता हूँ उसको हार्ट की बीमारी होने के चांस है कि नहीं, तो इवन एट द एज ऑफ 5 ईयर्स मैं उसका ब्लड टेस्ट करा के पता कर सकता हूँ कि मेरे इस बच्चे को हार्ट की बीमारी होने के चांस है कि नहीं।
Wow, this
वो
is
लेवल
very nice.
हम देख कर सीरम लाइपोप्रोटीन ए करा के हम वो चेक कर सकते हैं
जी।
फिर उसको हम स्पेशल बच्चे को शुरू से 5 साल की उम्र से या 4 साल की उम्र से ही स्पेशल उसकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, खाने के पीने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और फैक्टर्स के बारे में, बच्चे को शुरू से उस तरह ट्रेन करें ताकि उस बच्चे को दोबारा उनकी उसकी आर्टरी जैसे मुझे हार्ट अटैक हुआ उन बच्चों को ना हो।
बिल्कुल,
तो ये एक प्रिकॉशन हम ले करके चल सकते हैं
जी।
बाकी मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि सभी हार्ट अटैक्स में छाती में दर्द नहीं होता, पसीना भी नहीं आता।
अच्छा,
सिर्फ 30-40% हार्ट अटैक्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं,
पता भी नहीं चलता,
और ईसीजी में भी कभी चेंज नहीं आते। ईसीजी कराओ, ईसीजी में भी चेंज, ईसीजी नॉर्मल हो सकता है।
ओके
राइट, मतलब तो हमारे दर्शक ये ना सोचें कि ईसीजी नॉर्मल है तो हम सोचें कि हमें कुछ तकलीफ नहीं है। राइट,
तो मतलब तो फिर तो पता कैसे चलेगा।
हाँ, मतलब स्पेशली जो डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज है उनके नर्व्स वीक हो जाते हैं, इसलिए उनको पता नहीं लगेगा छाती में दर्द नहीं होगा, सिर्फ कमजोरी का एहसास होता है, अचानक कमजोरी हुई और बस ऐसे कमजोरी सी लगती है, हल्की सी घबराहट लगती है, ये नहीं भी लगे केवल सोते सोते हो जाता है और पता नहीं लगता है, सुबह उठने में थोड़ी कमजोरी फील होती है बस। तो जैसे अगर कभी डायबिटीज़ के पेशेंट को ऐसे लगे कमजोरी फील हो रही है, एक तो अपने शुगर टेस्ट करके देख ले, शुगर कम होने से भी कमजोरी महसूस हो सकती है हाइपोग्लाइसीमिया होने से, दूसरा हार्ट की तकलीफ, हार्ट अटैक आया हो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना ईसीजी करा के देख ले।
ओके,
नेक्स्ट है जरूर डॉक्टर को दिखा ले। डायबिटीज़ का मरीज अगर उसको सुबह उठ के कमजोरी फील होती है तो सुबह अपना शुगर जरूर टेस्ट कराए एक बात, दूसरा अपना ईसीजी करा के देख ले और डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, नेग्लेक्ट ना करें
जी।
क्योंकि ऐसे अचानक हार्ट अटैक आने पर पेशेंट अगर नौकरी पर चला जाता है, काम पर चला जाता है, वहाँ कलेप्स हो सकता है।
ओके,
कई लोग फिर अचानक, एक छोटा हार्ट अटैक सुबह होता है, रात में होता है, दिन में एग्जर्शन करता है आदमी, उससे बड़ा हार्ट अटैक में मर जाता है, डेथ हो जाती है। तो ये थोड़ी प्रिकॉशन लेने की डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आवश्यकता है।
okay.
और स्पेशली ओल्ड एज, एक दूसरी बात है ओल्ड एज मतलब मोर देन 75 ईयर्स ऑफ एज में कई बार साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है, और वो हार्ट अटैक मतलब उसमें यही बात, सिर्फ कमजोरी फील होती है सुबह उठ के, या ऐसा फील होता है और बस दैट्स ऑल, या हल्का सा पसीना आता है, अनएक्सप्लेन स्वेटिंग होती है बिना चेस्ट पेन के, बड़ा टूथ ना उसमें दर्द होता है।
अच्छा,
तो आदमी समझते दांत में सिर्फ दर्द हुआ है, पर दांत में दर्द अगर घबराहट हो रही साथ में इसका मतलब हार्ट का दर्द है। अगर दांत में दर्द है और साथ में घबराहट हो रही है, दांत के दर्द में घबराहट नहीं होती है, दांत का दर्द अगर घबराहट के साथ है तो हार्ट का दर्द है।
ओके,
ये बात भी ध्यान रहे, ठीक है
जी।
तो मैंने वो सब बातें ली हैं जो कि आम आदमी को, आम हमारे दर्शकों को मदद करेगा इस बात को जानने में
जी।
और आजकल इसके लिए हमारे इंटरनेट पे ये इसकी सारी सारी की सारी यूट्यूब पे सुविधाएं उपलब्ध हैं इसके बारे में जानने के लिए, हाउ टू मैनेज ए केस ऑफ हार्ट अटैक, मतलब प्राइमरी एड क्या देनी चाहिए, फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए
जी।
तो हमारे दर्शक उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर मैं दोबारा से आपके लिए रिवाइज करूँ, हम दर्शकों के लिए रिवाइज कर दूँ। पहली चीज पेशेंट कंप्लीट रेस्ट, सेकेंड चीज ऑक्सीजन, खुली हवा चाहिए, खिड़कियाँ दरवाजे खोल देने चाहिए, आसपास से लोगों को हट जाना चाहिए, और तीसरी चीज एक डिस्प्रिन की टैबलेट पानी में डिजोल्व करके तुरंत पेशेंट को पिला देनी चाहिए
जी।
चौथी चीज अगर आपके पास सॉर्बिटेट टैबलेट है या नाइट्रोलिंगुअल स्प्रे है, ओरल स्प्रे है, तो वो स्प्रे कर देना चाहिए, जीभ के नीचे टैबलेट रख देनी चाहिए, और उसके बाद एक टैबलेट से अगर आराम नहीं मिलता है तो 5 मिनट बाद रिपीट कर दीजिए, उससे भी आराम तीसरी बार फिर रिपीट कर देना चाहिए। और इस बीच में कोई ना कोई डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दे, हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करें, घर में एम्बुलेंस मंगा लें और पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करें, केयरफुली शिफ्ट करें। साथ में पेशेंट के पुराने रिकॉर्ड्स, ECGs, रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, जो भी पेशेंट की दवाई चल रही है वो ले जाना ना भूलें, वो जरूर साथ में लेके जाएं, और एक ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल में जरूर जाए जो उसके बारे में पूरी बात जानता हो
जी।
और बाकी काम डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें, डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करेंगे, ECG करेंगे, एक्सरे करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसको ICU में एडमिट करेंगे। नॉर्मली ऐसे पेशेंट को 3 से 4 दिन ICU में रखा जाता है, 2 से 3 दिन वार्ड में रखा जाता है, और उसके जो इंजेक्शन मैंने बताए, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो बताया, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, वो 3-3.5 हज़ार का इंजेक्शन आता है, और दूसरे जो हैं जो आजकल जो लेटेस्ट आए हैं वो टिनेक्टेप्लेज या रेटिप्लेज इंजेक्शन जो हैं वो 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में आते हैं, वो हेल्प करते हैं क्लॉट को डिजोल्व करने में।
ओके।
हमेशा क्लॉट से हार्ट अटैक आते हैं, ब्लॉक से नहीं आते हैं, और सबसे बड़ा कारण क्लॉट के खून जमने का, क्रैक होने का, वो है जल्दी, चिंता, गुस्सा, डर।
ओके।
जल्दी, चिंता, गुस्सा, डर, उदासी, और अपने मन की बातें शेयर ना करें। और कभी कभी जो हार्ट के पेशेंट हैं उनमें एक गलत रॉन्ग मील, हैवी मील, स्पेशली डिनर, कई लोग पार्टीज में जाते हैं रात को, शादी में जाते हैं और वहाँ जाके हैवी डिनर खा के आते हैं और आकर के फिर वो सो जाते हैं हैवी डिनर लेने के बाद, और रात में हार्ट अटैक आता है। ओके। एक सिंगल रॉन्ग मील कैन कॉज ए हार्ट अटैक इन द नाइट। ओके
जी।
इसलिए शाम का खाना बहुत हल्का खाना चाहिए, बहुत ही लाइट मील लेना चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए हैवी मील
जी। डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि किस तरह से फर्स्ट एड रेमेडी द्वारा हम ऑटोमेटिकली उस हार्ट अटैक के साथ में फाइट कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपने बात कही थी कि उन्हें कभी भी घेर करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उस वक्त, और ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा चलने के लिए कहा जाए, और साथ ही साथ आपने कहा था कुछ दवाइयाँ आपने सजेस्ट की हैं, ये इतनी सारी बातें हमें ज़रूर हम ध्यान रखेंगे और अगले एपिसोड में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, अगर हमारे आसपास किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, साथ साथ आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द आप उन्हें डॉक्टर के पास पहुँचा दें ताकि वो अपने फर्स्ट एड रेमेडीज़ के बारे में आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।